ये मेरा एक और सवाल था कि ये सूरह रहमान में है ना, यूरोप मुजरमीना बेगुनाहों का युगल जो नवाजी वाले काम, अकदाम के बारे में तो आपने बता दिया ना कि इकदाम, ये पेशानी के बालों में ये आता है कि बिन नवाजी पहचाने जाएंगे, पेशानी के बालों से पाँव से पकड़ लिए जाएंगे,
जी
ये
जी
पेशानी के बालों का क्या
अब
मतलब
मतलब ये देखे तमसीलन बात हो रही है। जैसे आप किसी बच्चे को कहते हैं मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी,
यार? चुप चुप करो, मेरी क्लास शुरू हो गई।
आप ये माइक ऑफ कर देना, बच्चों की आवाजें आती हैं तो आप ये माइक ऑफ कर दें। जी मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि देखें कि मुजरिमों को हम उनकी पेशानियों से मतलब उनके शक्लों से उनके करतूतों से उनके जाहिर है अल्लाह के सामने तो उनके सिर्फ जिस्म नहीं है ना, उनका औरा भी है, उनकी उनका नस्मा भी है, तो उनकी पूरा रिकॉर्ड भी है, तो वो तो बंदे के चेहरे से पता चल जाता है कि ये कैसा बंदा है। अब यहां पे कहा कि इनकी पेशानियों से पता चल जाएगा कि ये मुजरिम है और हम उनको उनकी पेशानियों से पकड़ेंगे, यानी कि क्या मतलब है कि उनके करतूतों की वजह से उनके जो तासुरात हैं उससे पकड़े जाएंगे, वो उनके करतूतों की वजह से जो उनके एक्सप्रेशंस होंगे। देखे ना चोर बंदा कैसे बिहेव करता है, और एक शरीफ आदमी जो है वो कैसे बिहेव करता है, एक अच्छा बंदा जो है उसके चेहरे का रंग रूप ही अलग होता है, तो उसको कैसे अब पैरों से पकड़ेंगे का क्या मतलब। हमने लफ्जी तर्जमा किया, ये लफ्जी तर्जमे को मैं एक मिसाल से आपको वाजे कर देता हूं। देखिए हजूर कलंदर बाब औलिया ने एक बात इरशाद फरमाई है किताब लौह कलम में, उन्होंने फरमाया कि सहाबा कराम को हजूर सलाम की जात में बहुत ज्यादा शगफ था, यानी बहुत दिलचस्पी रखते थे, और उसकी वजह से क्या था कि अहादीस यानी हजूर सलाम जो कुछ इरशाद फरमाते थे वो उसकी मानवियत अदबियत और मफहूम की पूरी गहराइयों से आशना होते थे और अल्फाज के नूरी तमस्सुलात से वो बगैर किसी कोशिश के वाकिफ हो जाते थे। ये चार दर्जे हो गए बात को समझने के। एक हो गया अल्फाज की मानवियत, एक हो गया अल्फाज की अदबियत, एक हो गया मफहूम की असल गहराई, और चौथा दर्जा है नूरी तमस्सुलात का। मैं आपको एक मिसाल अर्ज करता हूं। मैंने अपने बेटे को फोन किया, कॉल मिलाई, उसने कॉल उठाई, मैंने उसे कहा यार मेरा हैंड फ्री उड़ गया। उसने आगे से जवाब में कहा जी अबू ठीक है मैं शाम को आते हुए लेता आऊंगा। मैंने उसे थैंक यू बोला, कॉल काट दी। मैंने वक्त देखा तो सिर्फ 5 सेकंड हुए थे, मैं हैरान हो गया इतनी मुख्तसर कॉल। अब आप गौर करें क्या हुआ। अब मैंने क्या अल्फाज बोले, मेरा हैंड फ्री उड़ गया। अगर वो बच्चा कहता उड़ गया तो आपने क्यों उड़ने दिया, उड़ने का वो मतलब लेता कि उसके पर हैं, आपने पिंजरा क्यों खुला छोड़ दिया, इस तरह की बातें वो करने लगता तो मैं क्या कहता। जाहिर है कि ये है अल्फाज की मानवियत, अगर वो अल्फाज की मानवियत में उलझ जाता तो लफ्जी तर्जमा क्या है, हैंड फ्री उड़ गया यानी खराब हो गया, आप मैक्सिमम ये लेते। अब उसको अदबियत का पता है कि हैंड फ्री उड़ने का मतलब ये है कि वो खराब हो गया। अब मफहूम की गहराई क्या है कि उसे ये पता है कि बाप इत्तला दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसे पता है कि मैं बात इत्तलाइया नहीं दे रहा, मैं उसे फरमाइश कर रहा हूं, मैं उसको हुक्म दे रहा हूं कि भाई ये आते हुए एक एंट्री लेते आना, मेरा एंट्री खराब हो गया। अब ये है मफहूम की पूरी गहराई। गौर करें इस मिसाल पे, हम सारा दिन ये प्रैक्टिस करते हैं लेकिन जहां अल्लाह की बात आती है वहां हम लफ्जों का शिकार हो जाते हैं, वहां हम मानी अल्फाज के लफ्जी मानों को लेके बस रो पीट रहे होते हैं कि जी इसका क्या मतलब। भाई आप मफहूम तक पहुंचे ना, मफहूम यानी अदबियत से भी आगे गुजर कर आएगा। अदबियत यह है कि उड़ने का मतलब तो उड़ना है परों के साथ, लेकिन किसी चीज का फ्यूज हो जाना भी तो उड़ जाना है, बिजली का फ्यूज उड़ गया। अब उड़ने का हमने ये अदबियत में आ गया, लेकिन असल मफहूम क्या है कि जब मैं इत्तला दे रहा हूं कि भाई ये फ्यूज उड़ गया, तो क्या कह रहा हूं कि भाई जाके इसे ठीक करो। लेकिन हमने ये ठीक करो तक नहीं जहन को जाने दिया, हमने कहा जी वो पता नहीं क्या कहा, उड़ गया तो वो कैसे उड़ गया, तो वो तो पिंजरा खुला रह गया था, तो वो परिंदे थे। तो अरे भाई बात समझ में आई आपको?
जी सर थैंक यू
जी। और कोई सवाल? जी वालेकुम अस्सलाम। रहमान का क्या मतलब है?
मैंने पूछा कि कौन है रहमान।
जी जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि रहमान क्या है। ठीक है, लफ्ज रहमान जो है इसका मादा रहम है, रे हे मीम, हाँ या नहीं? अब रहम किसे कहते हैं? उर्दू में किया जाता है और अरबी में होता है। रहम रहमे मादर को कहते हैं। ठीक है, तो रहमान का मतलब हुआ रहम को बनाने वाला, यानी तखलीकी निजाम को बनाने वाला, पूरा तखलीकी निजाम। और करे वकैफा युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वो रहम में मादर में कैसे तस्वीर कशी करता है। और खबीर खबर देने वाले से, यानी किसी ऐसे बंदे से दरियाफ्त करो जो तुम्हें इत्तला दे सके, तुम्हें खबरदार कर सके, तुम्हें उसके आगाही दे सके, तुम्हारी फहम को में मतलब बात को उतार सके। अब ये अल्लाह का अंदाजे बयान है, किससे पूछेंगे? भाई अल्लाह से ही पूछेंगे, अल्लाह ही का कलाम है वो, उसमें जगह जगह अल्लाह ने, अब सूरह रहमान में अल्लाह रब्बे करीम ने अपनी रहमानियत के सारे पूरे तखलीकी निजाम ही की तो वजाहत की है। लेकिन हमें सवाब से ही फुर्सत नहीं है तो क्या समझेंगे उसे? ठीक हो क्या?
जी सर थैंक यू,
वेलकम।
हेलो
जी जी इरशाद फरमाइए।
हेलो
जी, वालेकुम सलाम।
सूरत आला में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि फरा पाई इसने जिसे संवारा खुद को, इस इरशाद आले मुकाम और बसीरत पर गौर करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना लाजिम है कि तज़किया क्या होता है, ये कैसे हासिल हुआ है, फरा दर हकीकत क्या होती है, इसके उसूल और क़याम के लिए हमें किन शराइत को पूरा करना जरूरी होता है। फरा और तज़किया को ना सिर्फ अलग अलग समझना होगा बल्कि ये भी देखना होगा कि तज़किया से मिला का क्या तलब बनता है,
फरा
को तज़किया से मशहूर करने में क्या हिकमत मौजूद है, वो कौन लोग है जिनकी बाबत उन्हें फला नसीब नहीं हो सकती, और वो कौन से काम है जिनके करने से तज़किया हासिल होता है। जब आपके जहनों में इन बातों को जो बिठा लेंगे, जो आयतें कुरानी से रस आफिज करदा होंगी, तो फिर उम्मीद की जा सकती है हमारे कौल और फिर अमाल पुरानी आयत की तालीम के मुताबिक से चलें और संवरने के मुताबिक शुरू हो जाए,
माशाल्लाह
शुरू हो जाए।
जी जी, अब सवाल ये है कि दो लफ्ज हैं, कद अफलाहा मन तज़क्का, कद सिर्फ वो, अफलाहा अफलाहा काम से मिल। देखें अरबी में फलाह का मतलब है हल चलाना, हल चलाना खेती बाड़ी में एक बुनियादी काम है या नहीं? इसी तरह कायनाती निजाम को चलाने में काम करना, अल्लाह आपको अपॉइंट करता है अपना नायब, आपने क्या करना है जो अल्लाह कहे वो करना है, वो काम करना फलाह है। हमने तर्जमा कर दिया कामयाबी, मैंने कहा काम मिलेगा तो कामयाबी होगी ना, काम ही नहीं मिला तो कामयाबी कहां से होगी। कद अफलाहा, सिर्फ उसको काम मिलेगा, मन तजक्का, जिसने खुद को डेवलप किया, जिसने खुद को संवारा, यानी अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया, अपने आप को ग्रो किया। अब मैं आपसे मिसाल पूछता हूँ, देखे ना आपने घर में कोई काम करवाना है और एक मदकूक सा पतला सा दुबला सा बूढ़ा सा कमजोर सा आदमी हो तो क्या आप उसे काम देंगे?
नहीं।
आपने फर्ज करें कि 50 गढ़े खुदवाने दरख्त लगाने के लिए हैं, तो आप उसी को कहेंगे ना जिसका जान होगी, जो कम से कम गढ़े की खुदाई कर सकेगा, हाँ या नहीं, खुदाल चला सकेगा, अगर जमीन सख्त होगी तो वो फावड़े का इस्तेमाल करके उस जमीन को तोड़ के उसमें से अंदर से मट्टी निकाल के गढ़ा बना के उसमें कर सके, जो ये सारे काम कर सकेगा वो आप उसके बाद ही उसे काम देंगे ना। तो इंसान के लिए इससे बड़ी कामयाबी क्या है कि वो अल्लाह के सिस्टम में काम पे लग जाए, क्योंकि अल्लाह ने आपको बनाया है अपना नायब। अगर हम अल्लाह के नायब हैं तो हमें अल्लाह के सिस्टम को समझना है और उसमें वो काम करना है जो अल्लाह चाह रहा है। काम से लग गए तो ये फलाह हो गई, वरना कामयाबी के लिए कुरान में लफ्ज आता है फौज, फौजुल अजीम, फौज का मतलब कामयाबी, फलाह का मतलब काम से लगना। आप अल्लाह के सिस्टम में काम से लग गए तो इससे बड़ी कामयाबी क्या? कामयाबी, काम मिल गया। कामयाबी का तर्जमा भी हमने गलत किया हुआ है, हमने इसका तर्जमा सक्सेस किया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। काम पे लग गए, आप काम कर रहे हैं, देखे ना, अब आप काम से लग गए, क्या क्या कुरान समझने बैठ गए तो क्या होगा? अब इतनी डेवलपमेंट हो गई ना कि आप कुरान को समझने बैठ गए। अब जूं जूं आप कुरान को समझते जाएंगे तू तू आपकी सलाहियतें और बढ़ती जाएंगी, आपका तज़किया होता जाएगा। तज़किये का मतलब है आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, अंदर से ग्रोथ, अंदर से नशो नुमा होती चली जाएगी। ये जो अंदर से नशो नुमा होती चली जाएगी, ये दरअसल क्या है? कामयाबी। कामयाबी के लिए जरूरी है भाई अंदर आप डेवलप करेंगे तो काम कर सकेंगे, काम कर सकेंगे तो काम मिल गया, काम मिल गया तो कामयाब हो गए। काफी है इतनी वजाहत,
बस काफी, ठीक है जी, माशाल्लाह समझ आ गई।
चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब अली, हेलो,
सूरह मुज़म्मिल में सानुल किया लेकर कॉलम सकील, पहले ऊपर आया अपना कुरान सकील, यानी कुरान तो मौजूद है, अब कॉलम सकील ये किसके बारे में था, कौन सा कौन?
जो कुरान में अल्लाह रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं उसी के लिए कॉल कहा है ना, ये जो आप कहते हैं कुल हो अल्लाह हो अहद है, तो ये कॉल ही तो है। बात मुंह से कहने में, देखे सुनने के बाद आप उसे प्रोसेस करते हैं। अब ये लफ्ज सकील है या सदीद है, मैं सुन नहीं पाया। सकल कहते हैं वजनी को, सकल कहते हैं जिसमें दम हो, ऐसी बात जिसमें जान हो। सकल का मतलब है जो डेंस हो, डेंसिटी हो, जिसमें जिसमें एक ठोस पनाओ, एक मतलब एक हल्की बात कही जाती है, एक भारी बात की जाती है। अब जैसे हजूर सलातम ने देखे ना, क्या तीन लफ्जों में चार लफ्जों में मौतु कबले अंतुम मौता, चार लफ्जों में कितना बड़ा राज बता दिया। चार ही लफ्जों में कहा मन अरफा नफसव फकद अरफा रब, ये पांच सात लफ्जों में पूरी बात कह दी। यह कौलुन सकील, इसमें सकल है, इसमें वजन है, इसमें जान है। अब जैसे हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल जन्नतो तहते इकदामे उम्हातुकुम, चार लफ्जों में पूरी नस्ल इंसानी को ठीक करने का फार्मूला दे दिया। तो ऐसे कौल को कौलन सकीला कहते हैं। यानी आप उस पर जितना गौर करते जाएं, अल्फाज की तादाद कम होती है, मफहूम बहुत बड़ा समाया हुआ होता है उसमें। जी सूरत का नंबर बताएं। वो तो मुझे भी पता तीसरे में। नंबर पता हो तो जल्दी निकल आती है ना, वरना ढूंढनी पड़ रही है। لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ اب اس کا مفہوم سمجھیں۔ علم کیا نہیں، کیا नहीं، नशराह खोल दिया، लका तुम्हारे लिए، सदर का सदर तुम्हारे सदर को۔ सदर किसे कहते हैं؟ जहां से आप किसी चीज को सादर करते हैं۔ मसलन आपने फैसला किया और वो फैसला इंप्लीमेंट कहां से हो रहा है؟ जहां से वो फैसला इंप्लीमेंट हो रहा है उसे सदर कहते हैं۔ हमने तर्जुमा कर दिया सीना۔ अल्लाह कह रहा है कि क्या मैंने तुम्हें फैसला करके उस पर अमल करने की सलाहियतें नहीं अता की؟ क्या तुम्हारा सदर खोल नहीं दिया؟ गौर करें، क्या हमने तुम्हें फैसले करने और उस पर अमल करने की सलाहियत नहीं अता की؟ हमने क्या तर्जमा कर दिया कि हमने तुम्हारा सीना नहीं खोल दिया؟ तो कहाँ खुला हुआ؟ किसी का सीना नहीं खुला हुआ، सारे ही ढके हुए، बंद है सारों के सीने۔ اور تم سے وہ بوجھ ہٹا نہیں دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی۔ یہ ہم نے ترجمہ کیا۔ اصل میں کیا وضع، وضع کرنا، یعنی کہ جیسے وضع حمل ہوتا ہے، جیسے ڈیلیور کر دیا، پورا کام کر دیا، یعنی کہ وہ جو فیصلہ تم نے کیا، تم نے لاگو کیا، اس کو پورا کروانے میں ہم نے تمہاری مدد کی۔ اور وہ جو نقص تھا تمہارے اظہار میں، زہرہ کا، تمہارے اظہار میں، ہم نے یہاں پیٹھ کر دیا۔ الذی انقض زہرہ کا، وہ جو تمہارے ایکسپریشن میں، یہ جو تمہارے اندر سے بات واضح نہیں ہو کے نکل رہی تھی، اس کی وضاحت، اس میں نقص تھا، اس میں جو کمزوری تھی، کیا ہم نے اس کو دور نہیں کر دیا؟ وَوَدْوَانَ عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْكَدَ زَهْرَكَ، ہم نے یہاں وزرک کا ترجمہ کر دیا، بوجھ ہے، اس سے ساری گڑبڑ ہو گئی، نتیجہ آپ کو کمر توڑنی پڑی۔ اصل میں یہ ایکسپریشن جو بات کا اظہار کرنے میں نقص ہے۔ دیکھیں نا، لوگ بات کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہوں تو کیا ہوگا، آپ بات کو کھل کے بیان کر سکتے ہیں۔ तो वो नुक्स जो था, वो जो जहर करने में इनकबाज था, ये जो कब्ज हुई हुई थी वो खत्म कर दी। ठीक है, वह रफान अल्लाह का जिक्र, और तुम्हारा जिक्र करना हमने बुलंद कर दिया, यानी कि जिक्र करने का मतलब है जिक्र, रफान अल्लाह का जिक्र, जिक्र का तुम्हारा जिक्र, यानी तुम्हारा जो हाफजे की सतह है उसको बुलंद कर दिया। इन्ना माल उसरे युसरा, बेशक मेहनत करने के साथ ही कामयाबी मिलती है, आसानी मिलती है, सहूलत मिलती है, मेहनत किए बगैर नहीं होती। ये देखें हमने कर दिया, तंगी के बाद आसानी है, बाद का लफ्ज है या माँ का लफ्ज है, माँ का मतलब है साथ। इन्ना माल उसरे युसरा, माँ साथ है, क्या भाई, जाहिर है मेहनत करेंगे तो आसानियां मिलेंगी। फिर दोबारा दोहराया, इन्ना माल उसरे युसरा, ये कानून है, जब मेहनत करोगे तो आसानियां मिलेंगी। हमने तर्जमा कर दिया, बेशक तंगी के बाद आसानी है। अरे भाई, तर्जमे को, लफ्जों को देखो तो सही, क्या लिखा क्या हुआ, और हम पढ़ कह रहे हैं और समझ कह रहे हैं। फा पास इजा फराखता, खुद को फारग करके, फन सब उसके अंदर नसब हो जाओ, किसके अंदर, वाइला रब्बे का फरगब, और अपने रब की तरफ बड़ी रगबत से जुते रहो, इला रब्बे का फरगब। देखें कैसा लफ्ज है, जैसे गप करके कोई चीज खा ली जाए, यानी इस तरह से अल्लाह की तरफ मतवजो हो, जैसे तुम किसी अच्छी चीज की तरफ तवज्जो देते हो रगबत के साथ। ठीक हो गया, तो बात समझ भी आई है, बस सिर्फ ठीक ही हुआ।
नहीं नहीं, समझ में तो आई, अभी तर्जुमा तो इतना समझ में नहीं आता ना, मफहूम नहीं था आपने समझू में।
चलें, मैंने कोशिश की कि आपको मानवियत से गुजार के, अदबियत से गुजार के मफहूम तक ले जाऊं, अल्लाह करे कि आप नूरी तमसलात देखने के भी काबिल हो जाएं।
अल्लाह आमीन आमीन। दूसरी बात ये है कि सूरह ज़मर का जो है ना, इतनी हल्की आवाज में समझ में नहीं आ रहा है, फॉरवर्ड मैसेज
है। चलें कोई नहीं, वो आपके उसमें फर्क होगा, मेरे पास तो साफ सुनाई दे रहा था।
अच्छा, हमारे पास कुछ लुक्स होगा
जी, उसे किसी दूसरे मोबाइल पे शिफ्ट करके वहां सुन लें।
ठीक है
जी, और कोई सवाल? जी जी फरमाएं। जी जी फरमाए।
हजरत आदम से तो जो इल्म अता किए गए, अल्लाह ताला उनको इल्म अस्मा के नाम से याद करते हैं, उन इल्म की वजह से एक तरफ मस्जूद मलाइका करार पाए, लेकिन दूसरी तरफ शैतान की हरकत का निशाना भी बने। क्योंकि अल्लाह ताला का अता करदा ये इल्म इंसान के माजी शऊर की सकत से बहुत।
जी हाँ, आपका सवाल क्या है? देखे ना, ये जो इल्मुल अस्मा का अतायगी है, इल्मुल अस्मा के अता होने का मतलब क्या है? इल्मुल अस्मा की अतायगी से पहले अल्लाह ने एक और बात फरमाई है, वनफख्तु फीहि मिनर रूही, जब मैं ने अपनी रूह में से कुछ फूंका, यानी अल्लाह ने कुछ सलाहियतें अता की आदम को। कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप सुनते जाइए। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इल्मुल अस्मा की अतायगी से पेशतर अल्लाह ने कुछ सलाहियतें फूंकी इंसान के अंदर, व नफख्तु फीहि मिनर रूही कह के उसका पता दिया। उन सलाहियतों के इस्तेमाल का इल्म इल्मुल अस्मा कहलाया, अस्मा कहते हैं इसम की जमा है, इसम कहते हैं किसी सिफत के नाम को, किसी भी सिफत के नाम को। जब आप किसी चीज का नाम रखते हैं तो आप उसकी सिफात को एक जगह जमा कर देते हैं, हाँ या नहीं? तो उन सिफात को बरतने का, उन सलाहियतों को जो अल्लाह ने अपनी रूह में से फूंकी थी, उनको सिखाने का इल्म अल्लाह ने अता किया। अब चूंकि वो इल्म इंसान की शौरी सकत से ज्यादा है, लिहाजा क्या किया कि उसको इंस्टॉल कर दिया उसके लाशौर में। वो सारा इल्म हर इंसान के अंदर उसके लाशौर में मौजूद है। अब हमारा काम ये रह गया कि हम दुनिया में जब आए हमने एक तो शैतान को डिफीट करना है, दूसरे तवज्जो को अपने लाशऊर की तरफ ले जाकर उस इल्म को खोजना है जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है। जब वो अंदर का इल्म हमारे जहन की सतह पे आएगा, हमारा शऊर उससे आशना हो जाएगा, हमारा शऊर उससे वाकिफ होके उसको इस्तेमाल करना सीख लेगा, तो क्या होगा? हम अल्लाह के अलूम से आरास्ता होके नियाबत के फराइज असर अंजाम दे सकेंगे। ठीक हो गया।
ये जो 40 अबवाब में तकसीम किया गया, ये क्या है, ये क्या बात है?
ये मतलब है कि शऊर के जी ये रूहानियत जो है, सारी कुरान जो है ये सारा रूहानियत है। कुरान आपको रूह के बारे में सारी बातें बता रहा है। इसको समझने के लिए हमारे बड़ों ने, ठीक है जी, इसके अबवाब मुकरर कर दिए। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, मैट्रिक में जाते हैं तो आपको 18 चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। इसी तरह इस इल्मे रूहानियत को 40 अबवाब में तकसीम किया गया। अब उनमें से एक बाब जैसे ख्वाबों की ताबीर बताना है, एक बाब इलाज करना है। अब हजरत ईसा ने जो इलाज करके दिखाए ये सारे इसी में आए। अब हजरत इब्राहिम ने परिंदों को ज़िबा करके काट पीट के उनका कीमा करके फैला दिया, फिर आवाज भी वो जिंदा होके आ गए। ये सारे वो चैप्टर हैं रूहानियत के जो कुरान हमें पढ़ा रहा है। अब कुरान ही में जिक्र है कि हजरत सुलेमान के दरबार में एक बंदा जो है वो पलक झपकने से भी कम वक्त में मलका सभा का तख्त जो है 1500 मील दूर से ले आता है। ये सब रूहानियत के चैप्टर हैं। ठीक है,
एक हमारे यहाँ पे कारी साहब थे तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया इल्मुल अस्मा का, क्योंकि क्या था ये? वो कहते हैं उन्होंने उनको याद कराया ये देखो ये दरख्त है, ये आसमान है, ये जमीन है।
असल में देखिए ये सारा जी मैं अर्ज कर देता हूँ, आपको वजाहत हो जाएगी। देखें हमें नाम रखने की सलाहियत अल्लाह ने अता की, चीजों के नाम किसने रखे? अब आप देखें ना, पानी को पानी कहते हैं, अंग्रेज इसे वाटर कहता है, फारसी वाला इसे आब कहता है, पश्तो में उबू कहते हैं, अरबी में से माँ कहते हैं। अब गौर करें, हमने एक ही चीज के मुख्तलिफ जबानों में नाम रखे, ये जबाने कहाँ से आई? ये इंसान की सलाहियतों के इस्तेमाल का एक नतीजा है कि हमने चीजों के नाम रखने सीख लिए। अब आप गौर करें, आपने पौधे के नाम, पौधों के नाम रखे, ये फला पौधा है, ये फला पौधा है, हर पौधे का आपने नाम रखा, तो ये भी इल्मुल अस्मा ही का एक हिस्सा है। लेकिन असल बात मैंने अर्ज की कि ये सलाहियतों के इस्तेमाल का तरीका है। उनमें से एक सलाहियत नाम रखना है, टैग लगाना है। अब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम क्या लिखा हुआ आता है? नहीं, हम रखते हैं। अब आपका नाम किसने रखा? आपके अम्मा ने रखा या अब्बा ने रखा या दादा ने रखा? ठीक है, आपके साथ लिखा हुआ तो नहीं आया? तो ये नाम रखना भी इसी इल्मुल अस्मा का एक जुज्व है। देखे ना, आपने अपने अब साइकिल के पुर्जे देखें, कितने पुर्जे हैं, सारों को मिलाकर आप कहते हैं ये साइकिल है, हालांकि साइकिल का मतलब तो दायरा होता है। आपने एक नाम रख दिया, अब उसे पहिया भी कह रहे हैं, उधर एक्सल भी कह रहे हैं, उसे स्पूक भी कह रहे हैं, उसे रिम कह रहे हैं, उसमें पता नहीं पैडल है, उसमें हैंडल है, उसमें ब्रेक है, उसमें पता नहीं कितनी पुर्जे, ये नट है तो ये बोल्ट है, और करें कितने नामों का मजमुआ जो है वो साइकिल कहला रही है। अब इसी तरह इंसान के देखें आप, आजाद के कितने नाम रखें, ये हाथ है, ये उंगलियां, ये हथेली है, ये नाखून है, ये कलाई है, ये बाजू है, गौर करें ये क्या सब नाम ही तो बोल रहे हैं। लेकिन क्या इंसान सिर्फ ये हाथ और उंगलियां और नाखून और हथेली और कलाई और बाजू और सीना और सर और गर्दन और फिर मुंह और आंखें और फिर उसके अंदर कितने नाम है, नाम ही नाम। अब ग्रेज एनाटॉमी पढ़े पता चलता है कि इंसान के अज़ा के उसने अंदर हजारों चीजों, हजारों नाम रखे हुए। एक डॉक्टर साहब को ये नाम ही तो पढ़ाए जाते हैं कि ये फलां रग का ये नाम है, फलां उजले का ये नाम है, फलां नर्व का ये नाम है। अब दिमाग के कितने हिस्से करके उसके नाम रख दिए। तो ये नाम रखने की सलाहियत उसी इल्मुल अस्मा का शाखसान है। लेकिन असल चीज ये है कि आप एक नाम को सुनकर उसको खोलते चले जाएं, जैसे साइकिल तो फिर आप खोलते जाएं, उसमें कैरियर भी है तो उसमें पैडल भी है तो उसमें पहिए भी हैं, उसमें ट्यूब भी है तो उसमें टायर भी है तो उसमें ब्रेकें भी हैं, कितने नाम और बोल दिए मैंने, इन सब का मजमुआ साइकिल बनी। तो ये सब भी इल्मुल अस्मा के ज़ेल में ही आता है। मौलवी साहब ने ठीक कहा, उनकी फहम यहाँ तक थी, उन्होंने यहाँ तक बता दिया, ठीक हो गया,
ठीक हो गया, समझ आ गया।
शुक्रिया।
सर जो कल वाला आपकी हुई हुई है, हम उसके भी क्वेश्चन सुनना चाहते हैं, आज इसमें आ नहीं रहे हूं।
क्या मतलब, क्या मतलब
क्लास में, मतलब आज मेरा तो सेकंड
नहीं नहीं ये तो
ग्रुप है,
ये पहला ग्रुप है ना, ये जुमेरात को पहले हो गया, अब कल होगा।
अच्छा ठीक है, क्योंकि सुनने में तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, दिल चाहता है कि बंदा सारा सुनता ही।
अल्लाह आपको खुश रखे जी। जी और कोई सवाल? जी क्या हुआ, सवाल खत्म हो गए?
सर एक सवाल है मेरा।
जी इरशाद।
हेलो।
जी जी इरशाद।
हेलो
इरशाद, बोले बोले।
हेलो
जी, फरमाएं जी, मुझे आ रही है आवाज आपकी। मुझे आपकी हेलो? आवाज आ रही है, आप फरमाएं।
मैं सवाल ये भी, जो रूहानी क्लास हो रही है, अब्बा जो रूहानी क्लास करवा रहे हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है, तो इसका जो मार्च में जो वर्ल्ड में जब कोई चीज एक साथ नशर की जाती है तो उसमें मार्च पे क्या असर पड़ता है?
देखें ये जो क्लास हो रही है ना, ये माशाल्लाह हजूर मुर्शिद करीम की हिदायत पे भाईजन वकार यूसुफ अजीमी साहब जो है इसे कंडक्ट करेंगे। जाहिर है कि अब्बा ने जो बातें उनको कही हैं वही वो क्लास में फरमाएंगे, ठीक हो गया। अब इसका मुआशरे पे क्या असर पड़ेगा, देखिए मुआशरा कैसे बनता है, अफराद से। मुआशरा कैसे बनता है, अफराद के मजमुए को मुआशरा कहते हैं ना।
जी जी
अब जब हम मुआशरती तौर पे अगर इस्लाह चाहते हैं तो हमें इंडिविजुअल्स को ही ठीक करना है ना। यानी अगर इंडिविजुअल्स अफराद खुद को, हर फर्द खुद को ठीक करने लग जाएगा तो क्या होगा, ओवरऑल मुआशरे पे उसका असर पड़ेगा, मुआशरा भी ठीक होता चला जाएगा। ठीक हो गया? देखे ना, जब मैंने पर्सनली एक बंदा मैं अक्सर एक जुमला कहता हूँ, लोग तो उसे हंसते हैं सुन के, मैं कहता हूँ यार अगर मैंने खुद को ठीक कर लिया तो कम से कम एक मूजी तो कम हुआ ना। तो मुआशरे पे ये असर पड़ सकता है कि अगर मैंने ठीक कर लिया खुद को तो कम से कम मुआशरे को एक मूजी से निजात मिल गई। वेलकम। किसमें मैं सुन नहीं पाया, किसमें? जी जी, एक देखें, ये कुरान में अनफसो आफाक, अनफस कहते हैं अंदर की दुनिया को और आफाक कहते हैं बाहर की दुनिया को। जब हम अंदर की दुनिया को ठीक कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया की सारी रोशनियां ठीक हो जाती हैं। जब हम अंदर की रोशनियों से तवज्जो हटा के बाहर मतवज्जो हो जाते हैं तो हम कसरत में खो जाते हैं। ये हजूर कलंदर बाब औलिया ने किताब लौह कलम में जुमला इरशाद फरमाया, अंदर देखना वहदत है और बाहर देखना कसरत है। इसी बाहर को, कसरत को आफाक कहा है और अंदर देखना जो है ये अनफस है। अफला तुबसिरून वफी अनफुसिकुम, मैं तो तुम्हारे अंदर हूं, अफला तुबसिरून तुम देखते क्यों नहीं। यहां पे आप इजाजत दें मैं थोड़ी इसकी वजाहत कर दूं। देखिए हम क्या करते हैं, देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना लेते हैं। तुब सिर बसर का मतलब है महसूस करना। मसलन आपको भूख लगती है, आपको भूख महसूस होती है, क्या भूख नजर आती है? लेकिन आप भूख को महसूस कर रहे हैं तो नजर ही आना हुआ ना। अब इसी तरह आप परेशान हैं, आपको परेशानी नजर आ रही है, आप खुश हैं, आपको क्या खुशी नजर आ रही है? जाहिर है नजर आ रही है, आप महसूस कर रहे हैं ना खुशी। अब एक माँ बच्चे को देख के कह देती है कि मेरा बेटा भूखा है, इसको भूख लगी है, क्या उसे भूख नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है, वो महसूस तो कर रही है ना। तो ये महसूस करना ही असल में देखना है, इसको बसर कहते हैं, वरना तो लफ्ज रा इस्तेमाल हुआ आंखों से देखने के लिए। अब हम लोग चूंकि अपने इनर में महसूस नहीं करना चाहते या करना नहीं जानते या किसी वजह से हमें करना नहीं आता, तो हम कहते हैं जी हम अल्लाह को कैसे देखें। भाई अल्लाह को महसूस किया जाएगा अपने इनर में, जैसे आप भूख को फील करते हैं, जैसे प्यास को फील करते हैं। कोई बंदा आपसे नफरत करता है आपको कितनी जल्दी पता चल जाता है, क्या उसकी नफरत नजर आ रही होती है? देखें ये गैर मरई चीजों को देखने की और इनको समझने की सलाहियत हमारे अंदर बददर्जा उत्तम अल्लाह ने रखी है, पर अल्लाह इसीलिए फरमाइश कर रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करो। हमने आगे से बाजा बजा दिया कि नहीं जी हमें तो आंखों से दिखे दिखता ही कुछ नहीं है। ओ भाई देखना नहीं है आंखों से, नहीं देखना अंदर में फील करना है, बसर बसर बसर, बसारत का इस्तेमाल करना है, नजर का नहीं करना। फर्क समझे, इसीलिए कहते हैं उसकी बसीरत, बसीरत पैदा करें। हम लोग यहां आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं, मुराकबा बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, आंखें बंद करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सदके जाऊं, क्या हमारा जहन है। ये सारा गड़बड़ कहां से हुई कि किसी ने ये बुनियादी बातें वाजे नहीं की थी आप पे। आपने कहा कि अल्लाह को देखना है तो आप जैसे दरख्त को देख रहे हैं, आप अल्लाह को भी इसी तरह दरख्त समझ के, अल्लाह को दरख्त है तौबा नाउज़ुबिल्ला, नहीं नहीं नहीं, उसको महसूस करेंगे अपने इनर में, ये अल्लाह को देखना ही हुआ। जैसे आपको भूख दिखती है, जैसे आपको प्यार दिखता है, जैसे आपको नफरत दिखती है, जैसे आपको गुस्सा दिखता है, हालांकि ये चीजें क्या दिखती हैं, इनका तो नजर से तो कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात वाज़े हो गई?
जी
चलें, खुश रहिए। काफी है या है कोई?
मेरा सवाल ये था, रूहानियत महसूस करना, एहसास करना है
तो और क्या? मैंने क्या साबित किया है? सारा खेल हिस्सियात का है, हिस एक एहसास है, एक महसूस है और एक हिस है, हैं? ये शाहिद और मशहूद और मुशाहिदा और शहूद क्या है? हैं? इसी का नाम नजर, नजारा, नाजर और मंजूर रखा। ये सब क्या है?
महसूस करना
महसूसात का ताल्लुक है ना, सारा खेल ही महसूसात का है। हम लोग महसूस करने से घबराते हैं, हमें शर्म आ जाती है या हम क्या कहते हैं, बौखला जाते हैं। क्यों? क्योंकि बना हुआ जहन, उसने रोका हुआ सब कुछ। ठीक हो गया जी? चले, खुश रहिए। ये आज दो किस्तों में शेयर करूंगा क्योंकि वो बीच में रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो गई थी। ठीक है?
अभी करेंगे या वो कहर के करेंगे?
आप कॉल बंद करेंगे तो मैं करूंगा ना।
ठीक है।
चले, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।